प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
तुम बिन कौन हरे मन की प्यास, यीशु बिन कौन हरे। तुम बिन कौन हरे मन की प्यास, यीशु बिन कौन हरे।
Thank you. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हमारा नमस्कार। हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम नए नियम से प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में अध्ययन किया। हमने देखा कि पवित्र आत्मा की प्रथम सेवा इस प्रकार आरंभ हुई कि वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे, परंतु वे ऐसी भाषाएं बोल रहे थे जिसे वहां उपस्थित जनसमूह भली भांति समझ रहा था। वे स्वर्गीय भाषाएं नहीं बोल रहे थे, वरन मानवीय भाषाएं बोल रहे थे। उन भाषाओं को बोल रहे थे जो भिन्न भिन्न स्थानों पर बोली जाती हैं। वहां तीन महाद्वीपों से लोग आकर एकत्रित हुए थे और वे अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके आश्चर्य कर्मों को सुन रहे थे। ये भाषाएं उन भाषाओं से पूर्णतः भिन्न हैं जो बाबुल का मीनार बनाते समय गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजी गई थीं, और वे आपस में एक दूसरे की कोई भाषा नहीं समझ पा रहे थे। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय के 1-9 पदों में आप देख सकते हैं। सो इस प्रकार जब शिष्यों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो सर्वप्रथम वे अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों की चर्चा करने लगे। मेरा विचार है कि अन्य अन्य भाषाएं वे इसलिए बोल रहे थे कि वहां अन्य अन्य भाषाओं के लोग एकत्रित थे। और प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के 2 अध्याय के 8वें पद में हमको बताया गया है कि वे सब अपनी अपनी मातृभाषा में परमेश्वर के सामर्थी कार्यों की चर्चा सुन रहे थे, और इसलिए वे लोग भौचक्के और घबराए हुए थे। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, वे सब गलीली थे जिनकी अपनी मातृभाषा एक थी, साथ ही वे ज्ञानी लोग नहीं थे। दूसरी बात, सुनने वाली भीड़ अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रही थी। वे कहते हैं, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये तो अनोखी बात हो रही है। परंतु कुछ लोग जो ठट्टेबाज थे, परमेश्वर के सामर्थ्य तथा पवित्र शास्त्र से अनभिज्ञ अर्थात अनजान थे, जिनके जीवन में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं था, वे कहते हैं ये तो नई मदरा के नशे में चूर हैं। श्रोता, ये तो सत्य है कि कोई व्यक्ति मदिरा के नशे में अपनी शक्ति से बढ़कर कार्य करता है। वह बहुत अंग्रेजी बोलता है, भयंकर अपराध करता है, अनहोने कार्य करता है, परंतु ये विश्वासियों का छोटा सा समूह अर्थात प्रथम कलीसिया मदिरा के नशे में चूर नहीं थे। आज हम संत पत्रस द्वारा इस बात के स्पष्टीकरण तथा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वाइये इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें, अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगें और प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इन सुंदर और मधुर क्षणों के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमको दिए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करें, ताकि हम आपके वचन को समझें, ग्रहण करें और आपके वचन का पालन कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी संकट में है या किसी घोर अपराध में फंसा हुआ है, किसी परीक्षा में घिरा हुआ है, किसी आवश्यकता में है, प्रभु आप उसकी सहायता करें, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, हमारे साथ प्रभु के वचन से देखें प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक, उसका 2 अध्याय 14वें पद से आगे देखिए। यहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु पत्रस उन 11ों के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, तुम ये जान लो और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 ही बजा है, परंतु यह वो बात है जो योएल नबी के द्वारा कही गई थी, परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडोलूंगा और वे नबूवत करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लोहू और अग्नि तथा धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और महिमामय दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा, और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मित्रवर, यहां लिखा है कि जो लोग यहां एकत्रित थे वे कौन थे? मित्र, उन दिनों में यरूशलेम पूर्णतः यहूदी बस्ती था, वहां यहूदी ही रहा करते थे, ये सब यहूदिया के लोग थे। आरंभिक कलीसिया 100% यहूदी विश्वासियों के द्वारा बनी थी, वे वास्तव में इसराइलियों के द्वारा बनी थी। वे इसराइली जिन्होंने यीशु को प्रभु और मसीह स्वीकार किया था। यह अति महत्वपूर्ण बात है कि कलीसिया का उदय अर्थात जन्म यरूशलेम ही में हुआ, और उसके पश्चात वो यहूदिया, सामरिया तथा पृथ्वी के अन्य देशों अर्थात पृथ्वी के छोर तक फैलती गई। मित्रवर, पवित्र आत्मा के आने के पश्चात कलीसिया का विस्तार प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय के 8वें पद के अनुसार हुआ। पुराने नियम के अनुसार ये यरूशलेम ही में था, ये यरूशलेम नगर ही था जहां संसार के लोग आराधना के लिए आते थे। परंतु अब प्रभु ने अपने प्रेरितों को आज्ञा दी है कि अब तुम यरूशलेम से बाहर निकलकर संसार के भिन्न भिन्न देश व राष्ट्रों को परमेश्वर के इस सुसमाचार को सुनाओ। सुसमाचार क्या है मित्र? सुसमाचार है कि मसीह यीशु जगत के पापियों के पापों के बदले क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए तथा तीसरे दिन जिलाए गए, और इस प्रकार विश्वास द्वारा अनुग्रह से मनुष्य का उद्धार है। यही सुसमाचार है। जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के कारण मेरे स्थान पर क्रूस पर मारे गए, वह कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, उसका उद्धार होता है। पापी मानव परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। एक बहिष्कृत पापी जो मृत्यु का भागी है वह अनंत जीवन का भागी हो सकता है। यही सुसमाचार है। क्या यह सुसमाचार नहीं है कि आपको बिना कुछ करे, बिना प्रयास के अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, परमेश्वर की संगति प्राप्त हो जाए और आप अनंत काल तक पवित्र और निर्दोष कहलाएं, आप कभी नाश ना हो। तब 15 और 16 पदों में बताया गया है कि जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 ही बजा है, परंतु ये बात है जो योएल नबी के द्वारा कही गई थी। प्रिय मित्र, पत्रस उनकी मक्कारी व ठट्टेबाजी का उत्तर देते हैं और वो बताते हैं कि ये नशे में नहीं है, परंतु ये योएल नबी की भविष्यवाणी की पूर्ति है। तब 17 से 21 पदों में योएल नबी की भविष्यवाणी को यहां उद्धृत किया गया है, और तब 22वें पद में पत्रस पुनः बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु मसीह की साक्षी देते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पद हैं, आइए आप भी इस पर ध्यान दें। पत्रस कहते हैं, हे इसराइलियो, इन बातों को सुनो। यीशु नासरी एक ऐसा मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य के कार्य, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से जो उसने उसके द्वारा तुम्हारे समक्ष किए तुम पर प्रकट किया, जैसा कि तुम स्वयं जानते हो। इसी मनुष्य को जो परमेश्वर की पूर्व निश्चित योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया था, तुमने विधर्मियों के हाथों क्रूस पर कीलों से ठुकवा कर मार डाला। फिर आगे पत्रस कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। प्रिय मित्र, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सामर्थ्य के कार्य और आश्चर्य कर्म तथा चिन्ह तीनों भिन्न भिन्न हैं। ये तीनों कार्य भिन्न भिन्न उद्देश्य से किए गए हैं। पहला, कुछ चिन्ह उन्होंने इस उद्देश्य से किए कि उनके द्वारा मसीह प्रकट हो सके। सामर्थ्य के कार्य अर्थात चंगाई के कार्य ये प्रमाणित करने के लिए किए गए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और आश्चर्य कर्म इसलिए किए गए कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इस प्रकार से ये तीनों कार्य तीन भिन्न भिन्न उद्देश्यों से किए गए। पत्रस यहां ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कुछ घटना घटी है वह परमेश्वर के कार्यक्रम के विपरीत नहीं है। यह अचानक होने वाली घटना नहीं है, परंतु फिर भी इसका तात्पर्य यह नहीं कि मनुष्य इस घटना के उत्तरदायित्व से बच जाए। पत्रस कहते हैं, तुम उसके उत्तरदायी हो। पत्रस कहते हैं, इसी मनुष्य को जो परमेश्वर की पूर्व निश्चित योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया था, तुमने विधर्मियों के हाथों क्रूस पर कीलों से ठुकवाकर मार डाला। पत्रस कहते हैं कि तुम इस व्यक्ति के दोषी हो। फिर भी ये बात पत्रस के संदेश का मुख्य विषय नहीं है। वो आगे बताता है, 24वें पद में वो कहता है कि परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। पत्रस का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं है, उसका मुख्य विषय है कि परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। और तब यहां पत्रस पुनरुत्थान का प्रचार करते हैं, क्योंकि यहूदी अगुओं ने पुनरुत्थान के सत्य को जनसाधारण से छिपा दिया था, जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय के 62 से 66 पदों में पढ़ते हैं, जहां याजकों ने सिपाहियों को, पहरेदारों को पैसा देकर ये कहा कि तुम ये किसी से ना कहना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वरन तुम ये कहना कि उसके चेले उसको उठा कर ले गए। इस प्रकार से उस समय के धार्मिक अगुओं ने, यहूदी अगुओं ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सत्य को अधर्म से, झूठ से दबा दिया, और इसलिए पत्रस इस सत्य को ठोस प्रमाण के साथ जनसाधारण के समक्ष उजागर कर रहे हैं। तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं जहां लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं सर्वदा प्रभु की ओर निहारता रहा। यहां पत्रस एक भविष्यवाणी का उल्लेख करते हैं। वो दाऊद के द्वारा की गई भविष्यवाणी को बताते हैं। दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं सर्वदा प्रभु की ओर निहारता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है जिससे मैं डगमगा ना जाऊं, और इसलिए मेरा हृदय आनंदित हुआ व मेरी जीभ हर्षित हुई, और मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं रहने देगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। प्रिय मित्र, पत्रस अब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दावे को 32वें पद में स्पष्ट करते हैं, और वो कहते हैं, इसी यीशु को परमेश्वर ने जीवित किया जिसके हम साक्षी हैं। पत्रस कहते हैं कि जिस प्रभु यीशु को तुमने कीलों से ठुकवाकर मार डाला, उसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवित किया जिसके हम साक्षी हैं। 32वें पद में वो ठोस प्रमाण देते हुए दावे के साथ कहते हैं कि हम उसके पुनरुत्थान के साक्षी हैं। श्रोता मित्र, ये प्रथम संदेश है जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के पश्चात पत्रस के द्वारा दिया गया। ये कलीसिया के इतिहास का प्रथम उपदेश है। ये पिंतेकुस्त का दिन था। ये संदेश अर्थात उपदेश का शीर्षक योएल नबी की भविष्यवाणी नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। ध्यान दीजिए, इस संदेश का अर्थात उपदेश का शीर्षक योएल नबी की भविष्यवाणी नहीं है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश है। इसका मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। प्रेरित पत्रस 25वें पद से 28 पदों में राजा दाऊद के भजन 16 के 8 से 10 पदों को उद्धृत करते हैं। मित्रवर, पत्रस ने ऐसा करके बड़ा अच्छा किया, नहीं तो हम भजन 16 का अर्थ नहीं समझ पाते। अधोलोक का तात्पर्य सियोल से है, जिसके विषय में 27वें पद में चर्चा की गई है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं रहने देगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। अधोलोक का अर्थ सियोल से है। और 31वें पद में इसकी पूर्ति होती है, जहां लिखा है, इसलिए उसने उन्हें होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कहा, वो ना तो अधोलोक में छोड़ा गया और ना ही उसकी देह सड़ने पाई। पत्रस इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये भविष्यवाणी दाऊद के विषय में नहीं है। यदि आप 29वें पद को देखें तो पत्रस कहते हैं कि भाइयों, मैं तुमसे कुलपति दाऊद के विषय में विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि वह मर गया और दफनाया भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है, क्योंकि वह एक नबी था, अतः जानता था कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाई थी कि वह उसके वंश में से किसी एक व्यक्ति को उसके सिंहासन पर बैठाएगा। और इसलिए पत्रस कहते हैं कि ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूर्ण होती है, उनके पुनरुत्थान के द्वारा ये भविष्यवाणी पूर्ण हो जाती है। पत्रस ने पवित्र आत्मा से भरकर, अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता से भजन 16 की व्याख्या की है। तब 33वें पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करके उसने उसे उंडेल दिया, जिसे तुम देखते और सुनते भी हो। पत्रस इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवित किया, जिसको तुमने मार दिया था, और हम उसके साक्षी हैं, और अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है और सर्वोच्च पद को प्राप्त करके और पिता से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करके उसने उसे उंडेल भी दिया है, क्योंकि दाऊद तो स्वयं स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप ही कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। और इसलिए इसराइल का संपूर्ण घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया, और इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। प्रिय मित्र, पत्रस इस बात का कारण बताते हैं। भजन संहिता 110 के प्रथम पद को वो यहां पर उद्धृत करते हैं और वो ये बताते हैं कि दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह के विषय ही में भविष्यवाणी की है। तब 36वें पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर पत्रस स्पष्ट रूप में कह देते हैं कि तुम निश्चय जान लो कि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया है, इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। मित्रवर, पत्रस इसराइलियों को यह स्पष्ट करते हैं कि यीशु ही मसीह और प्रभु है, और जब तक वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए दोबारा से पृथ्वी पर नहीं आते, तब तक वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। बैठने से तात्पर्य ये नहीं कि वो किसी आराम कुर्सी पर बैठे हैं या टांग पर टांग रखकर बैठे हैं, परंतु इसका तात्पर्य ये है कि वे समस्त अधिकार के साथ संसार का संचालन कर रहे हैं तथा पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया के मध्य तथा कलीसिया के द्वारा क्रियाशील हैं। और हम देखते हैं कि पत्रस के उपदेश का आधार मसीह का पुनरुत्थान है। इस प्रचार का सुनने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए अग्रिम पदों में देखें। उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छित गए और वे पत्रस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर हैं, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वह उनसे आग्रह करता रहा कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें लगभग 3,000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पत्रस की साक्षी द्वारा उन लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मेरे मित्र, 41वें पद में हम पढ़ते हैं कि उनमें लगभग 3,000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। उसी दिन ये व्यक्ति उनमें सम्मिलित हो गए। ये मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 18 और 19 पदों की पूर्ति है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस से ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझसे ये भी कहता हूं कि तू पत्रस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और इस प्रकार मेरे प्रिय मित्र, प्रथम व ऐतिहासिक कलीसिया की स्थापना हुई। मसीह का पुनरुत्थान इसका आधार है और आज भी कलीसिया का आधार मसीह का पुनरुत्थान है। अब इन्हीं वचनों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।